ओम शांति। बाप दादा से मिलन मनाने 18 जनवरी अव्यक्ति मिलन मनाने आप सभी पहुंचे। आप सबका स्वागत है, लेकिन आप सबका क्लास कराने के लिए आदरणीय विमला दीदी जी इंदौर जोन के जबलपुर कटंगा से, उनका भी आप सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। आप 45 वर्षों से बाबा के ईश्वरी यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने इंदौर जोन के अनेक सेवा केंद्र खुलने की आप निमित्त बनी हैं और राज्यों की शिक्षिका हैं, मीडिया विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप एक कुशल वक्ता और साथ साथ योग की भट्टियां कराने की अनुभूति कराने के लिए भी आप इंदौर जोन के अनेक स्थानों पर जाती हैं। टीचर्स ट्रेनिंग में भी आप कन्याओं को बहुत सुंदर शिक्षाएं देती हैं। आदरणीय विमला दीदी जी, आप सभी की भी अभिज्ञान रत्नों से झोली भरेंगी।
ओम शांति। अभी हम सभी एक सुंदर सा गीत सुन रहे थे। किसका गीत था ये? वे किन्हों के दिल का गीत है ये? लाख करे दुनिया, तेरा साथ न छोड़ेंगे। वे किन का ये गीत है? किन के दिल से ये निकलेगा? एक तो मुख से निकलता है और कईयों को कानों से सुनना भी अच्छा लगता है। और कुछ हैं जिनके ये दिल का गीत है, ये दिल की आवाज, ये उनके दिलों की आवाज होगी, उनके दिल का गीत होगा, जिनकी स्थिति हर परिस्थिति में एक रस, अटल, अचल और अडोल रहती है। वही कहेंगे ना, लाख करे दुनिया। हम तो कहें दुनिया क्या लाख कर, लाख परिस्थितियां भी करें, लाख पेपर परीक्षाएं भी करें, लेकिन कभी भी हमारा बाबा का साथ, बाबा का हाथ छूटेगा नहीं। कितने भी विघ्न आ जाएं, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन कोई भी हमें बाबा से दूर नहीं कर सकता। कोई भी बात हमें संशय बुद्धि नहीं बना सकती। तो अचल और अडोल स्थिति, ये सच्चे राजयोगी की पहचान है। पर ये स्थिति बनाने के लिए बाबा एक शब्द देते हैं, हड्डियां बड़ी मजबूत चाहिए। जिसकी हड्डियां मजबूत होती है शरीर की भी, तो वो गिर भी जाते हैं तो उनके हड्डियों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। और जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर होती है, थोड़ा सा झटका भी लगेगा तो कुछ न कुछ समस्या उनके हड्डियों में आ ही जाएगी। बाबा भी कहते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत कैसे होगी? हड्डियां मजबूत होगी तो कभी हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, कोई भी बात से चोट नहीं खाएंगे। तो शरीर की भी हड्डियां मजबूत के लिए, शरीर उनका मजबूत होता है जिनके रोम रोम में, रग रग में खून जाता रहता है, ब्लड जाता रहता है। जहां ब्लड नहीं जाता है वहीं समस्या पैदा हो जाती है, वहीं तकलीफ हो जाती है। तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं? भाई खून हर जगह पहुंचे उसके लिए ऐसी दवाई देते हैं जिससे खून पतला हो और वह रग रग में पहुंच जाए। तो बाबा भी कहते हमारी आत्मा की हड्डियां मजबूत कब होगी, हमारी आत्मा की स्थिति। आत्मा की स्थिति का मतलब है मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों में से कहीं भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं। ये तब मजबूत होंगे तीनों ही, आत्मा की मजबूती कहें इस, जब हमारे रग रग में रोम रोम में बाबा का ज्ञान पहुंचा हुआ होगा, बाबा का ज्ञान समाया हुआ होगा। तो बाबा का यह ज्ञान हमारी स्थिति को भी मजबूत बनाता है। तो हमारी स्थिति को अचल बनाने में, अडोल बनाने में, एक रस बनाने में ज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए गीता में भी भगवान ने क्या कहा, मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। योगी शब्द उसमें नहीं आया, क्योंकि योग का आधार भी ज्ञान ही होता है। जितना ज्ञान अच्छी तरह से समझा हुआ होगा, निश्चय बुद्धि से उसको माना हुआ होगा, धारणा में लाया हुआ होगा, तो बातें कैसी भी होगी, एक बार हमारा योग भी टूट जाएगा। कभी कभी जीवन में अचानक परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, ऐसी बातें हो जाती हैं, योग टूट जाता है, योग नहीं लगता है। लेकिन यदि ज्ञान हमारे रग रग में गया हुआ होगा, ज्ञान स्वरूप हमारी स्थिति होगी, ज्ञान को हमने निश्चय बुद्धि से समझा हुआ होगा, वो ज्ञान उस समय भी हमको संभाल कर रखेगा, गिरने नहीं देगा। योग टूट गया पर ज्ञान ने हमको पकड़ के रखा, क्योंकि समझ थी ना। क्या समझ थी? ये पेपर परीक्षाएं तो आएंगे ही, ये हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। पिछले कई जन्मों के हिसाब किताब अभी हमारे सामने आएंगे, किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। तो ज्ञान के इस बात ने हमको संभाल कर रखा, हमें गिरने नहीं दिया, हमें टूटने नहीं दिया। भले योग टूट गया हमारा, पर ज्ञान ने हमको संभाल करके रखा। इसलिए इसी अर्थ से जो गीता में लिखा हुआ है, मुझे ज्ञानी आत्मा प्रिय है, क्योंकि जिसने ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से, गहराई से, सूक्ष्मता से समझा हुआ होगा, वो कभी भी किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परीक्षा में, कैसे भी विघ्नों में भी वह संशय बुद्धि नहीं बनेगा। बाबा में संशय नहीं आएगा, ज्ञान में संशय नहीं आएगा, और ज्ञान में वो बना हुआ रहेगा। इसलिए ज्ञान की भी हमारी स्थिति को अचल और एक रस बनाने में, अडोल बनाने में ज्ञान की, ईश्वरी ज्ञान की अहम भूमिका है। दूसरी बात, बाबा ने ये यज्ञ रचा है, बहुत प्यार से ये यज्ञ रचा है, एक सुंदर विश्व का निर्माण करने के लिए। ये यज्ञ, ये संस्था को हम यज्ञ ही कहते हैं ना। यज्ञ क्यों रचा भगवान ने? क्योंकि इसके पीछे रहस्य यही, अर्थ यही, ये यज्ञ के द्वारा जो मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन होगा, संस्कारों का परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन संस्कारों से एक सुंदर संसार बनेगा। तो भगवान ने एक सुंदर संसार बनाने के लिए यज्ञ रचा, और इस यज्ञ की संभाल के लिए हम ब्राह्मणों को निमित्त बनाया, जिम्मेवार बनाया। तो इस यज्ञ के प्रति जो ईश्वर ने ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ के प्रति हम ब्राह्मण बच्चों की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, एक नहीं बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, हम सब इसके निमित्त हैं। लेकिन उन सब जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए, जिम्मेवारियों का निर्वाह बहुत अच्छी तरह से कर सकें यज्ञ के प्रति, यज्ञ को हम पूर्ण करें, पूर्ण आहुति इसी हो जाए, तब तक के लिए हम सभी जिम्मेवार हैं इस यज्ञ के, इसकी संभाल के। लेकिन एक कौन सी सबसे बड़ी जिम्मेवारी, यदि वो जिम्मेवारी यदि हमने समझ ली तो सारी जिम्मेवारियों का निर्वाह बहुत अच्छी तरह से हम कर सकेंगे। वो पहली जिम्मेवारी हमारी इस यज्ञ के प्रति, जो बाबा ने ये यज्ञ रचा, ये संस्था बनाई है, हमको निमित्त बनाया, उसके लिए सबसे पहली, सबसे अनिवार्य, सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारी है अपनी स्व स्थिति को बनाए रखना, सदा बनाए रखना, कभी कभी का बनाकर नहीं रखना, कभी कभी तो स्थिति बहुत अच्छी बन ही जाती है। जैसे मधुबन में आते हैं, योग भक्ति करते हैं, मधुबन के वातावरण में रहते हैं, यहाँ की क्लासें सुनते हैं, दादियों का सानिध्य मिलता है, स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन नहीं, स्व स्थिति को सदैव बनाकर रखना, अपनी स्थिति को अच्छी रखना, स्थिति को हिलने नहीं देना, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी इस यज्ञ के प्रति है। बाबा को पहली आपका यही सहयोग चाहिए, आपकी स्थिति का सहयोग, क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी होगी तब आप सेवा भी अच्छी कर सकेंगे, आपकी स्थिति अच्छी होगी आप यज्ञ की संभाल भी अच्छी कर सकेंगे। तो हमारी स्व स्थिति कहते भी है ना, हम ब्राह्मणों की सबसे प्रिय चीज, सबसे प्यारी चीज संगम युग में है हमारी अवस्था, हमारी स्थिति। और जो प्यारी चीज होती है, बहुत प्रिय चीज होती है, उसकी संभाल भी उतनी ही अच्छी तरह से की जाती है। हमारी स्थिति हमें बहुत प्रिय है संगम युग में, इसको हम किसी भी हालत में बिगड़ने देना नहीं चाहते। हमारी स्थिति को हर तरह से, हर समय हम संभाल करके रखना चाहते हैं। उसके लिए कई हम तरीके भी अपनाते रहते, कभी युक्तियों को भी अपनाते रहते हैं। तो हमारी ये स्व स्थिति को बनाने में, जैसे पहले मैंने आपको बताया ज्ञान की अहम भूमिका है, दूसरी स्थिति को अचल बनाने में, अडोल बनाने में, एकरस बनाने में योग की भूमिका भी कोई कम नहीं। जितना हम अपने अंदर योग बल भरेंगे, ये योग का बल ही अंत समय में काम आएगा। चारों तरफ हमें हिलाने वाली बहुत सारी परिस्थितियां तैयार हो जाएगी, लेकिन उस समय भी अभी का भरा हुआ योग बल, योग की ताकत उस समय हमको संभाल करके रखे, हमारी स्थिति को संभाल कर रखेगा। तो कहने में तो ये योग शब्द ढाई अक्षर का है, योग शब्द एक मात्रा है और दो अक्षर हैं, ढाई अक्षर का ये योग शब्द। लेकिन यदि इस योग को हम सही विधि से प्रयोग में लाते रहें, सही विधि से इसका अभ्यास करते रहें, तो यह योग हमें 2500 साल की प्राप्ति कराता है, 2500 साल की हमें प्रारब्ध देता है, 2500 साल तक के लिए सुख शांति आनंद खुशीमय जीवन को बना देता है। बस यही बात है, इस योग को अच्छी तरह से जानकर, समझकर, सही विधि से इसका हम अभ्यास करते रहे और सही विधि से अभ्यास करते रहने में हम कर्म योगी भी बन करके रहे। कभी कभी समय निकालकर हम योग साधना में बैठते हैं, निष्ठा में बैठते हैं, तब तो खैर एक घंटा योग, आज योग भट्टी है सेवा केंद्र पर, एक घंटा गए अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे गीत बजे, बहनों ने दृष्टि दी, सकाश दी, हमको वाइब्रेशन दिए, हमें उसकी भी पावर मिली, गीतों ने भी हमारे मन को बड़ा अच्छा एकाग्र करके रखा, वो एक घंटे योग तो हमारा बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाकी समय हम कर्म में रहे, अपना कर्म करते रहे, उस समय योग हमारा नहीं था। लेकिन हमारा योग कर्म योग में बदल जाए, क्योंकि आगे चल करके बाबा ने जैसे इशारे दिए हैं, परिस्थितियां तो बहुत, वातावरण तो संसार का बहुत खराब होता जा रहा है, हम तो कहते हैं खराब क्या, खतरनाक भी होता जा रहा है, और ये खराब और खतरनाक दिनों दिन ज्यादा ही बढ़ना है, कम नहीं होना है। और अंतिम समय में जब इतना खराब वातावरण, इतना खतरनाक वातावरण होगा, ये हमारा कर्म योग, ये हमारा योग का बल जो अभी हमने खास अटेंशन दे करके किया था, इस बल को भरा था, ये खजाने को जमा किया था, ये उस समय हमें बहुत शक्ति देगा, उसे हमें बहुत उस समय बल मिलेगा, हमारी स्थिति उस समय ऐसे वातावरण में भी हिलेगी नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम बेचैन नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम तनाव में नहीं आएंगे, हम दुखी अशांत भी नहीं होंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो चारों तरफ ऐसी ही होगी। इसलिए योग ही एक ऐसा साधन है इतना, जिससे सारे हमारे खजानों के द्वार, वो शक्तियों के जो भंडार खुल जाते हैं, सारे ज्ञान के खजाने कहो, गुण के खजाने कहो, बाबा ने खजाने तो बहुत दिए हैं ना, और सारी शक्तियां इस योग से ही हम अपने अंदर भर सकते हैं। तो ये योग को हम सही विधि से, खास करके कर्म करते हुए भी हमारी योग की स्थिति बनी रहे, अटेंशन देने की यही बात है। समय समय पर हम योग साधना करते हैं, भट्टी करते हैं, तब हमारा योग बहुत अच्छा है, क्योंकि लक्ष्य लेकर ही बैठते हैं। लेकिन दिन भर हम कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी का काम हो, धंधे का काम हो, घर गृहस्थ का काम हो, अपनी घर की जिम्मेवारी हो, और सेवा का भी कार्य हो, कोई भी कर्म हो, लेकिन कर्म करते भी हमारी स्थिति योगमय हो, योग युक्त हो, योग में ही जैसे हम रहकर कार्य करें। कईयों को आपने देखा होगा ऐसा, चल रहे हैं, देख रहे हैं, आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, ओम शांति भी करें, लेकिन उनकी स्थिति से लगता है कि ये इस समय भी योग में है, बैठकर योग नहीं कर रहे इस समय। तो ये स्थिति हमें बनाने पर विशेष ध्यान देना है, विशेष अटेंशन देना है, और खास सावधानी रखनी है कि कोई भी कर्म करते बीच में मेरा योग न टूटे, क्योंकि समय अनुसार बाबा भी चाहते हैं, बाबा का भी यही इशारा हमें मिलता रहता कि समय की समीपता को देखकर अब हमारा योग निरंतर और स्थिति हमारी अचल और अडोल बन जानी चाहिए, स्थिति अब ऐसी हो जानी चाहिए, योग हमारा निरंतर हो जाना चाहिए। तो योग को निरंतर बनाने में, कर्मयोगी बनने में कौन कौन सी बातें हमें सहयोग प्रदान करेगी, या योग को ऐसा बनाने में उनका बहुत हमें मदद मिलती है, योग की ऐसी स्थिति को बनाने में सबसे पहली जो बात है वो है संतुष्टता का गुण। जिसमें संतुष्टता का गुण है, ऐसा तो गुण तो सारे ही अपनी जगह महत्वपूर्ण है, सारे ही गुण देवी देवता बनने के लिए जरूरी, अकेला संतुष्टता ही नहीं, लेकिन ये एक ऐसा गुण है, बाबा ने भी इस गुण की बहुत महिमा सुनाई है। और सर्टिफिकेट की बात आती है तो और गुणों में सर्टिफिकेट नहीं, बाबा कहते हैं संतुष्टता में सर्टिफिकेट लेना है ना? बाबा कहते तीन सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं से संतुष्ट, औरों से संतुष्ट और हमसे भी संतुष्ट, दूसरे भी हमसे संतुष्ट, ये तीनों सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करना है, तब कहेंगे ये पढ़ाई की डिग्री आपने प्राप्त कर ली है। तो इसलिए गुणों में सर्टिफिकेट की बात संतुष्टता के लिए ही आती है। ये संतुष्टता एक ऐसा गुण है, आप भी आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, स्वयं में देखेंगे, अगर संतुष्टता का गुण हमारे अंदर नहीं है तो कहीं न कहीं हमारी स्थिति या हम विचलित होते रहते हैं। हानि लाभ की बात है, मान अपमान की बात है, दुख सुख की बात है, कई प्रकार की ऐसी बातें आती है जीवन में, बहुत सारी बातें आती रहती, परिस्थितियां आती, उसमें थोड़ी हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, मन में थोड़ा सा भाव आ जाता है, थोड़े संकल्प चलने लगते हैं। लेकिन जिसके जीवन में संतुष्टता का गुण पक्का है, मजबूती से उसके अंदर ये गुण है, वो कभी भी किसी से भी कहीं भी कोई भी बात में असंतुष्ट नहीं होता। कैसी भी उसको सेवा दो, मान मिले तो भी वैसा, मान नहीं मिला तो भी वैसा ही, उससे छोटों को आगे किया तो भी इसकी स्थिति वैसी ही, उसको नहीं किया या उसको किया तो भी वैसी ही स्थिति। कभी भी असंतुष्टता की रिंचक लकीर भी उसके चेहरे से, उसके मस्तक पे दिखाई नहीं देती। हमारे योग को निरंतर बनाने में, कर्म योगी बनाने में संतुष्टता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यदि आप सभी में इस गुण की यदि कमी है तो आप आज से इसका महत्व समझकर, क्योंकि अंतिम स्थिति के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है ना, अंतिम समय की तैयारी तो हमारी हो जानी चाहिए ना, शुरू तो हो ही जानी चाहिए, पूरी तैयारी नहीं तो शुरू तो हो ही जानी चाहिए। वो तैयारी में ये संतुष्टता के गुण को अपने जीवन अच्छी तरह से धारण करो, और धारण नहीं होता है तो बार बार हम इसको याद करते रहें, बार बार अटेंशन दें, सावधान हम रहें कि कहीं हम संकल्प से भी असंतुष्ट नहीं होते हैं, ऊपर से असंतुष्ट नहीं दिखाई लेकिन संकल्प में असंतुष्ट आ गई, ये ध्यान देने की बात है। संतुष्टता के गुण को अपने जीवन में अच्छी तरह से धारण करेंगे तो ये एक गुण ऐसा है, इसे कमांडर भी कह दो इस गुण को, तो कमांडर के पीछे सेना आ जाती है, अपने आप ही चलती रहती उसके पीछे पीछे। संतुष्टता के गुण को अपनाएंगे और सारे गुण अपने आप ही उसके पीछे पीछे आते जाएंगे, और हम एक गुण के आधार से सर्वगुण संपन्न भी बन सकेंगे। तो योग साधना में पहला तो ज्ञान का महत्व हमारी स्थिति को मनाने में, दूसरा हमारे योग साधना का भी महत्व, लेकिन योग साधना का भी हमको उसको सही विधि से अपनाना, सही विधि से उसका अभ्यास करना है, और योग साधना को निरंतर बनाने में संतुष्टता के गुण को हमें जीवन में अपनाना ही है। हाँ, संतुष्टता गुण लाना चाहिए, हाँ लाना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं, मुझे जीवन में अपनाना ही है और स्थायी रूप से अपनाना है। अब ये संतुष्टता जो संतोषी सदा सुखी, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समार, ऐसी कहावतें आपने बहुत सुनी है। तो देखो, संतोष के लिए, संतुष्टता के लिए गुणों में, इसी गुण पर एक देवी का भी नाम है, संतोषी देवी। तो संतुष्टता का आधार भी संतुष्टता हमारे जीवन में तब आएगी जब हमारे अंदर त्याग वृत्ति होगी। योग का आधार, निरंतर योग का आधार, कर्म योगी बनने का आधार संतुष्टता, संतुष्टता का आधार त्याग वृत्ति। जितना हमारे जीवन में त्याग वृत्ति होगी, दूसरों को आगे करें, नयों को हम आगे करें, उनको आगे आगे बढ़ाएं, उसमें कभी ये भावना नहीं मैं क्यों त्याग करूं, मैं आगे रहूं। जितना हम ये मैं का त्याग करेंगे, मेरे का त्याग करेंगे, ये मैं ही सब, मैं और मेरा हमें शब्द लगाना, मैं आत्मा, मेरा बाबा, बस। बाकी वो हम जो अपने लिए देह अभिमान वाला मैं और देह से संबंधित बातों में मेरा मुझे ही मिल जाए, सब मेरा हो जाए, मेरा ही मान हो, मेरी ही शान हो, मेरा ही नाम हो, मेरा ही सब कुछ हो, सब कुछ मेरे को ही मिल जाए, ये मेरे का त्याग। साथ साथ में ये इच्छाओं का भी त्याग, क्योंकि जहाँ इच्छाएं होती हैं वहाँ संतुष्टता नहीं रह सकती है। इच्छाओं के साथ संतुष्टता बिल्कुल ठहर नहीं सकती है। जैसे कहते ना, दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही इच्छाएं संतुष्टता को खा जाती है। तो इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा तो हमें मुरलियों में कई बार 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 सीख देते ही हैं, हमारा ध्यान खिंचवाते ही हैं कि बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या बनना चाहिए। एक इच्छा हमारी पूरी हो गई, जो सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान को पाने की, भगवान मिल जाए, मेरी जैसे सब इच्छा पूरी हो गई, अब पाने के लिए मुझे कुछ नहीं रहा। एक भगवान को पाने के, भगवान के एक क्षणिक झलक पाने के लिए हमने भक्ति में कितने अनुष्ठान किए, कितने तीर्थ किए, कितने व्रत किए, कितना त्याग किया। एक माता मुझे अनुभव सुना रही थी कि यहाँ पर आई हुई है वो अभी हमारे साथ में, तो मुझे एक बार अनुभव बता रही थी कि मैंने भगवान को पाने की कितनी भक्ति करी। रात को दर्शन सुना था कि वहाँ सुबह 6 बजे दर्शन होंगे भगवान के, ये तो मूर्ति ही, पत्थर की मूर्ति थी वो, पर मूर्ति के दर्शन के लिए रात को हम 10 बजे से लाइन लगाकर खड़े रहे। वो कई अनुभव बता रही थी, बहुत अनुभव सुना रही थी। इतना जो जहाँ बोलता वहीं हम भाग भाग के जाते, कठिन कठिन यात्राएं भी की हमने कि कहीं हमें भगवान की झलक दिख जाए, झलक मिल जाए, भगवान की क्षणिक अनुभूति हो जाए। बस भगवान एक बार आपकी जो मूर्ति है, ये मूर्ति एक बार एक क्वार्टर सेकंड के लिए पलक झपका ले, बस इतना ही मुझे दिख जाएगा तो मैं समझूंगी मेरी भक्ति पूरी हो गई, मुझे भक्ति का फल मिल गया। वो माता ऐसा अनुभव सुना रही थी, एक क्वार्टर सेकंड में पलक झपक ले बस वो मूर्ति, मैं समझूंगी मैंने इतनी जो कष्ट उठाए हैं, इतना जो भक्ति मार्ग में इतना सब कुछ किया, मुझे उसका फल मिल गया, मेरी भक्ति सफल हो गई। तो मैंने उसको कहा कि अभी तो आप एक क्वार्टर सेकंड पलक झपकाने की बात कह रही हो, और अभी देखो भगवान मिला है, तो भगवान तो हमारे सामने हैं, कितने घंटे तक हा? चलो अभी थोड़ा बाबा का प्रोग्राम थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी पिछली बारी भी 2 घंटे 2.25 घंटे बाबा हमको दृष्टि देते रहे ना, हम बच्चों को देखते रहे ना। मैंने उनको कहा देखो क्वार्टर सेकंड की बात हो, कहा इतने घंटे तक हम बाबा से दृष्टि लेते रहेंगे, बाबा हमको, भगवान हमको देखता रहेगा। ये आपके वो भक्ति का ही फल है जो आपने इतनी भक्ति की, दिल से भक्ति की, और आपके जो अरमान रहे हैं वो देखो अरमान सब भगवान ने अभी पूरे किए, आपको भगवान मिल गया। तो कहने का भाव ये कि जो इच्छाएं, हमारी इच्छा कौन सी सबसे बड़ी इच्छा, उस इच्छा में सब इच्छाएं मर्ज हो जाती है, वो इच्छा हमारी पूरी हो गई। भगवान को पाने की इच्छा थी, भगवान मिल जाए, प्रभु मिल जाए, बस परमात्मा मुझे मिल गया, मुझे आत्मा को मेरा परमात्मा मिल गया, मेरी सब मनोकामना पूर्ण हो गई, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो पाना था वो मैंने पा लिया, तो फिर सब बातों का त्याग स्वतः ही हो जाता है। ये इच्छा पूरी होने की लगन रही तो और सब बातें अपने आप ही, ये दुनियावी इच्छाएं, ये और जो नाम पाने की इच्छा, मान पाने की इच्छा, ये भी सब खत्म हो जाती है। आगे आगे मुझे आगे किया जाए, मुझे आगे रखा जाए, ये भी सब इच्छाएं हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक इच्छा को पकड़कर आप चलेंगे तो बाबा कहते हैं ना, सब इच्छाएं अपने आप बाबा पूरी कर ही देता है, पर बस आप एक ही इच्छा में बने रहो, बाकी इच्छाओं का आप त्याग करो। तो ये त्याग वृत्ति, जितने हमारे अंदर ये त्याग वृत्ति होगी, और त्याग वृत्ति आती है संतुष्टता के गुण से। संतुष्टता का गुण यदि हमारे जीवन पक्का हो गया, स्थायी हो गया, कभी कभी का नहीं, हमेशा के लिए, तो त्याग वृत्ति अपने आप ही बन जाएगी। और ये त्याग वृत्ति का आधार, त्याग वृत्ति किससे होगी? त्याग वही करेगा जिसको वैराग आ जाएगा। तो त्याग वृत्ति का आधार है वैराग वृत्ति। ज्ञान में हम आए, ज्ञान को समझा, और ज्ञान को समझा कि सृष्टि चक्र का ये अंतिम समय चल रहा है, संगम युग चल रहा है, संगम युग का भी अब अंतिम समय आ गया है, और परमात्मा भी अपने वायदे के अनुसार धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा सृष्टि पर आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा आकर हम आत्माओं से मिलन मना रहे हैं, उन्होंने हमें ज्ञान के सारे राज बतलाए हैं, सारा सत्य ज्ञान हमें अभी ही मिल रहा है, जिसको हम ईश्वरी ज्ञान, सत्य पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान के सागर का ज्ञान अभी हमको मिल रहा है। जब हमने ये सब बातें यहाँ करके समझी, अंतिम समय, अंतिम जीवन है, जीवन का भी अब अंतिम समय चल रहा है, और अंतमति सोगति अब हमें बनानी है, तो अपने आप ही हमें सब बातों से वैराग आ गया। अब ये संसार का बहुत कम समय बचा है, अब ये संसार के प्रति कोई रुचि नहीं, जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है, शिव बाबा का संदेश सबको देना है, सब भक्तों को बाबा का परिचय देना है, परमात्मा से उनको मिलाने की सेवा करनी है, बस इसी धुन में, इसी लगन में हम लग गए, बाकी सब बातों से वैराग। खास वैराग कौन सा? ये मैं का त्याग, मेरा का जो त्याग, बाबा कहते हैं ना, ये मैं को भस्म करो, ये मेरा बोलना बंद करके सब तेरा बोलना शुरू करूं, मेरा बंद, तेरा चालू, तो मेरे को हमने भस्म कर दिया। ये देह अभिमान वाला, ये देह का मैं था, इसको पूरा हमने भस्मीभूत कर दिया। तो ये मैं और मेरे को जो हमने भस्म किया, और ये जो हमने अगर भस्म किया फिर कभी आना नहीं चाहिए। जो चीज भस्म हो जाती वो फिर वापिस उस स्वरूप में आती नहीं है। जैसे शरीर भस्म हो जाता है, राख बन जाती है, फिर वापिस वो शरीर के रूप में थोड़ी बन जाएगा। तो जब हम मैं और मेरेपन को भस्म कर देंगे, तो यही परमात्मा की, भगवान की, वो शिव की भस्मी बन जाएगी। तो कहते हैं ना, वो कभी उन्होंने तो शिव और शंकर को एक ही बना दिया है, भक्ति मार्ग वाले शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। तो शंकर को कैसा बताया है? पूरे शरीर में भस्मी लगाया हुआ है ना, राख लगी हुई है ना, राख माना जो भस्म होता है उसकी राख बन जाती है। ये जो हमने मैं और मेरेपन को जो भस्म किया, वही शिव की भस्मी है, और ये भस्मी ही शिव का सच्चा श्रृंगार है, वो उसका श्रृंगार है, पूरे शरीर पे लगा के रखा है। कहानियां भक्ति मार्ग में बहुत सुनी है ना, कि पार्वती भक्ति मार्ग की कहानी है, पार्वती की माता ने कहा नहीं ऐसे जो सारी पूरे शरीर पे जिसे भस्म लगा के रखी, भस्म को पोत के रखी, ऐसे से मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। तो उन्होंने तो शिव शंकर को मिलाकर एक बनाया, तो ये जो हमारी भस्मी है वही शिव बाबा की, भगवान शिव का सच्चा श्रृंगार है, और यही भस्म आज वैराग्य की सच्ची निशानी है। जो भी वैरागी होते हैं, सच्चे वैरागी, आधुनिक वैरागी नहीं, जो सच्चे वैरागी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, आपने देखा होगा उन साधुओं के शरीर के ऊपर भस्म लगी रहती है, ये वैराग्य की निशानी है कि ये वैरागी है। तो वास्तव में ये सारी भस्मी का जो इतना गायन है, संन्यास में भी, भक्ति में भी, मंदिर में भी जाएंगे थोड़ी सी भस्मी लेके लगाएंगे। महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में है, वहां पर एक भस्म आरती होती है, कईयों ने देखा भी होगा, उसमें भाग भी लिया होगा, रात को 12 बजे होती है, वो कभी कभी होती है, साल में 2-4-5 बार ही होती, ज्यादा रोज नहीं होती है। और उस आरती का बड़ा महत्व है, उसको भस्म आरती बोलते हैं। और भस्म आरती क्या होती है, वो उस समय रात को 12 बजे जो शमशान से जो ताजा ताजा जिस मुर्दे को जलाया है, शव को जलाया है, उसकी ताजी ताजी राख लेके आते हैं और उससे शिव का श्रृंगार करते हैं, उसको कहते हैं भस्म आरती है। और उसमें भाग लेने के लिए, उसमें उपस्थित होने के लिए कई मुख्य लोगों को शामिल किया जाता है, वो लोग उसके लिए इतना दान करते हैं तब उसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखो आज ये हमारी वास्तव में ये भस्म क्यों, कौन सी भस्म आरती, परमात्मा शिव को या शंकर को जो उन्होंने शिव शंकर बनाया है, पूरा श्रृंगारी भस्म से किया हुआ है, और वैराग्य की निशानी साधु संतों ने जो अपने ऊपर भस्मी लगा के रखी हुई है, ये कौन सी भस्मी है, ये हमने जो मैं और मेरेपन को भस्म कर दिया, खत्म कर दिया, फिर कभी हमारी बुद्धि, हमारा एक संकल्प भी जिसको हमने खत्म किया उस तरफ एक संकल्प भी नहीं चला, पीछे पलट कर नहीं देखा, खत्म कर दिया हमारे, खत्म कर दिया। तो वास्तव में वैराग्य वृत्ति उन्हीं में आ सकती है जिसमें त्याग वृत्ति होगी, वो वैराग्य बहुत जल्दी बन जाएगा। त्याग वृत्ति वाला वैराग्य वृत्ति बनने में उसको देर नहीं लगेगी, ये संसार अब जाने वाला है, ये सब सारहीन है, अब कुछ किसी बात में कोई सार नहीं रहा। वैसे भी आप देखो जो भी चीजें संसार में मिल रही है ना, सब सारहीन है, न स्वाद रहा है न उसमें सार रहा है, वो पहले जैसी चीजें कहाँ रही है। चाहे अनाज देख लो, चाहे फल फ्रूट देख लो, चाहे खाने की चीजें देखो, चाहे और भी सब बातें देख लो, सब बातों का सार खत्म हो गया है। तो वास्तव में सारा संसारी समय असार बन गया है, सारहीन बन गया है, ये जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, सब वस्तु वैभव सब कुछ सब खत्म हो मृग दृष्णा जैसा है। अब इन सब से जैसे हमारी बुद्धि एकदम वैरागी बन जाती है, उपराम हो जाती है, और बुद्धि लग जाती है सिर्फ एक बाबा से मिलन मनाने में, निरंतर बाबा से हमारा बुद्धि योग जुटा रहे, मन उड़ उड़कर ऊपर ही जाता रहे बाबा से मिलन मनाने में, कर्म करते हुए संसार में चलते हुए भी बुद्धि ऊपर ही ऊपर रहे, यही हमारी कर्मयोग है, यही हमारा निरंतर योग वाली स्थिति है। तो जो संतुष्ट होगा वह त्याग वृत्ति वाला तो होगा ही, और जो त्याग वृत्ति वाला होगा वो वैराग्य वृत्ति वाला तो बन ही जाएगा। तो अब हमें तैयारी ऐसी करनी है, बाबा के इशारे हमें समय प्रति समय मिल भी रहे हैं, पिछले साल की वाणियां भी देखो उसके पिछले साल की वाणियां भी देखो, बाबा के यही बार बार इशारे हैं कि समय की समीपता को देखते हुए अब बच्चों की स्थिति ऐसी बन जानी चाहिए। अचल अचल अडोल, कोई भी बात में हमारी स्थिति डोलायमान ना हो, ये बाबा की हम बच्चों के प्रति आशा है, बाबा की हम बच्चों से यही अपेक्षा है और बाबा की यही उम्मीद है। बाबा ने तो हमारे बहुत सारे अरमान पूरे कर दिए, बहुत सारे तो कहेंगे सारे ही अरमान पूरे कर दिए। अब क्या हम बाबा ने जब हमारे सारे अरमान पूरे किए, हम बाबा का ये एक अरमान पूरा नहीं कर सकते हैं क्या? अपनी स्थिति को एक रस बना लें और जब हमारी सभी ब्राह्मणों की सब बाबा के बच्चों की स्थिति अचल बन जाएगी, एक रस बन जाएगी और वही समय होगा बाबा की प्रत्यक्षता का, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष हमारी स्थिति से होगा। भक्तों को अपने इष्ट देवी और इष्ट देवियों का साक्षात्कार होगा हमारी ऐसी स्थिति से। तो अब ये कार्य रहा हुआ है, सेवा का कार्य हमने बहुत किया, तो वर्षों से बाबा की से हर तरीके से हमने बाबा की सेवा की, सब प्रकार की सेवा करके बाबा को बताई, बहुत भक्तों को संदेश मिल गया, आत्माओं को संदेश मिल गया, सब आत्माएं अब समझने भी लगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाकर जीवन सचमुच देवियों देवताओं जैसा बनता है, बहुत सुंदर जीवन बनता है, अच्छा जीवन गुणवान जीवन बनता है। लेकिन अभी ये बात रही है, अभी एक सेवा बची है और वो सब के लिए हम ही जिम्मेवार हैं और ये जिम्मेवारी हमें पूरी करके बाबा को बतानी है। अब हमें जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करना है और प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी स्थिति को बहुत अच्छी बनानी है। अब हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस बात पर रहे, हम सावधान रहें इस बात से रहें, बस हमारा मन बुद्धि बाबा से हटकर इधर उधर की बातों में न भटकने लगे, बाबा से योग टूटकर और बातों से जुड़ न जाए, बस निरंतर कर्म करते चलते फिरते उठते बैठते, बस ये थोड़ा सा है तो मेहनत की बात, जितना जितना अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, स्वयं के ऊपर ध्यान रखेंगे, अपने संकल्पों पर ध्यान रखेंगे तो ये स्थिति बन ही जाएगी। बाबा के बच्चों के लिए, भगवान के बच्चों के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम ठान लें, दृढ़ निश्चय कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले, हमको ऐसी स्थिति बनानी ही है। और बाबा ने भी पिछली मुरली में, इसके पहले ही बाबा जो आए थे, बाबा ने कहा 31 दिसंबर को बाबा की पद्रामणी हुई थी, बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया, अब बच्चे मैं कौन, वाह वाह, पहले तो बाबा ये पक्का कराते थे मैं कौन एक आत्मा, लेकिन उसमें बाबा ने कहा ठीक है आत्मा तो है ही, लेकिन कौन सी आत्मा, मैं आत्मा वाह वाह, मेरा बाबा वाह वाह, मैं आत्मा भी वाह वाह, मैं वाह वाह, हर बात में वाह वाह, बस ये वाह वाह करते रहो तो वाह वाह बन ही जाएंगे और वाह वाह बनना ही हमारी बहुत अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति को दर्शाता है ना, हम बहुत वाह वाह है माना हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हर बात में हम ओके हैं, अच्छे हैं, संतुष्ट हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं, तो ये हमारी स्थिति ही अब बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। और अब हम बाबा के घर आए हैं, बाबा से मिलन मनाने आए हैं, तो कोई भी तीर्थ पर जाते हैं कोई भी एक दृढ़ संकल्प करके जरूर आते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऐसा नियम बना हुआ है, कुछ चीज छोड़ने का, कुछ बुरी चीज छोड़ के जाते, कोई अच्छा संकल्प लेके जाते हैं, तो ये भी हम बहुत बड़े तीर्थ पर आए हैं और भगवान से इस तीर्थ में यहाँ पर भगवान से मिलन होता है। यहाँ से हम सभी ये शुभ संकल्प करके जाएं। वैसे भी बाबा ने दृढ़ संकल्प कराया था 31 तारीख की वाणी में, दृढ़ता से बोलो, दृढ़ता से, कभी कभी वाह वाह नहीं, हमेशा वाह वाह। तो उसी संकल्प को हम फिर से दोहराएंगे और अंदर संकल्प करके जाएंगे, बाबा हम सबसे बड़े तीर्थ पर आए हैं, मधुबन में आए हैं, आपसे मिलन मनाने आए हैं, आपसे दृष्टि से हमें कितनी शक्ति मिलेगी, वो शक्ति भर के हम जाएंगे और वो जो आपसे मिली हुई शक्ति हमारे संकल्पों को, लिए हुए संकल्प को सदैव दृढ़ बनाकर रखेगी, दृढ़ करने में हमेशा मदद करती रहेगी। तो ऐसा संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएं, इसी शुभ संकल्प के साथ, आप सभी के लिए शुभ भावना के साथ, ओम शांति।